نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں، اس کتاب میں سے آج کل جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ خواتین کا جماعت اور اجتماعی معاملات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس میں سے 7 پوائنٹس ہم کر چکے، آج ہم اس کا 8واں نقطہ کریں گے. ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کیسے وہ برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتی تھی. پوائنٹ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازواج مطہرات کے طلب میراث کے ارادے پر احتساب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت. اب دیکھیے، آپ لوگ اعراب لگائیں کیونکہ ہمارے اردو اور عربی میں بہت فرق ہے، کوئی اس کو راحلت پڑھ سکتا ہے، کوئی روحلت پڑھ سکتا ہے، اور چونکہ ہم اردو میں کافی ریلیکسڈ ہوتے ہیں لیکن ہمارے اپنے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ عربی سے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس پہ اعراب لگا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی بعض بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ کی میراث میں سے اپنے حصے طلب کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا احتساب کیا. امام مسلم نے عروہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ سے روایت نقل ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے عثمان بن عفان کو ابو بکر کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے اپنی میراث طلب کرے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا رسول اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے. یعنی نبیوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں وہ صدقے میں چلی جاتی ہیں، ان کے بچے یا ان کے بیوی میں وہ نہیں تقسیم ہوتی. قصے سے کیا پتہ چلا؟ پہلی بات ہے کہ امہات المومنین بھی خطاؤں سے پاک نہیں تھی، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ بھی تو اسلام کا ایک حکم ہے نا کہ ورثے کی تقسیم یا ورثہ مانگنا، تو بظاہر ہمارے ہاں کسی کا وراثت میں سے حصہ مانگنا اپنا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے اور شرعی حق کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. دوسری بات ہے، امہات المومنین قابل عزت اور احترام ہے، لیکن غلطی کی صورت میں ان کا مقام و مرتبہ ان کے احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. یعنی جب کبھی امہات المومنین سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کا بھی احتساب کیا جائے گا، یہ دوسرے جملے کا یہ مطلب ہے. یعنی عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ان سے غلطی تب یہ نہیں کہا جائے گا چلے کوئی بات نہیں نا، نبی کی بیویوں نے غلطی کی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کرتے. تیسری بات، حضرت عائشہ نے اپنے احتساب کی اساس فرمان نبی کریم پر رکھی، جیسے کہ ہر واقعے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ صحابیت اپنے پاس سے نہیں ٹوکتی تھی، اور یہ احساس انتہائی قوی اور مضبوط اور ٹھوس ہے. یہاں میرے آپ کے لیے بھی ایک عمل کی بات ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو روک ٹوک کرتے ہیں نا، تو اپنی طرف سے بات کر دیتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں ایسا کرو اور میں نے کہا اور اٹھو یہ کرو. لیکن اگر ہم اپنی طرف سے بات کرنے کی بجائے اگر نبی کی کوئی خوبصورت حدیث، قرآن کی کوئی آیت، اس کا ترجمہ وہ اس وقت کوٹ کر کے پھر خاموش ہو جائیں تو وہ زیادہ اثر آئے گا. بعض مائیں بول بول کے ہر وقت بچوں کو روک ٹوک کر کے چڑ چڑا دیتی ہیں، اور حدیث کے معاملے میں تو کوئی بھی نہیں آگے سے زیادہ بول سکتا. تو لہٰذا تھوڑی سی بات میں ایک جملہ بول دیں اور دیٹس اٹ، اس کے بعد بات کو آگے چلنے دیں. تو اس واقعے میں بہت سمپل سا لیسن ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی کو قرآن اور سنت کے کسی حکم سے عمل سے دور دیکھا جائے تو پھر اس کو روکا ٹوکا جا سکتا ہے. اگلا واقعہ جو ہے، صحابہ کو گالی دینے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احتساب. کچھ لوگوں نے حضرات صحابہ کو گالی دی. یہ دیکھیے، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، نفاق کے ساتھ ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں. حضرت عائشہ نے ان کا احتساب کرتے ہوئے اس حرکت کی سنگینی اور قباحت، یعنی اس کی برائی کو بیان کیا. اس کی دلیل امام مسلم نے عروہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے میرے بھانجے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ان کو گالی دی. قاضی ایاز نے حضرت عائشہ کے اس فرمان پر حضرت عائشہ کے اس فرمان کے پس منظر کے بارے میں تحریر کیا، یعنی عائشہ نے ایسا کیوں کہا ہے یا یہ کب ہوا تھا واقعہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل مصر کی عثمان رضی اللہ عنہ، اہل شام کی علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کی سب صحابہ کے بارے میں گفتگو سن کر انہوں نے یہ بات بیان فرمائی تھی. یعنی ایسا کہنے کا موقع کب ملا یا کیوں کہنا پڑا؟ جب کچھ لوگوں نے ایسے موقع پہ یہ بات کی تھی. तो इस किस्से से भी ये पता चला कि अहले ईमान को सहाबा के मामले में दुआए मगफरत करने का हुक्म दिया गया। कुरान पाक में एक आयत है, सूरत हशर की है ये आयत गालिबन, वल्लज़ीन जाओ मिन बादिहिम यकूलून रब्बना अग़फिर लना वलिख़वानिना अल्लज़ीन सबकूना बिल ईमान, और जो इन महाजरीन और अनसार के बाद आए और वो कहते हैं हमारे रब हमें माफ़ फरमा और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। हजरत साहबा को बुरा भला कहने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में मना फरमाया है। इन्हीं में से एक हदीस वो है जिसको इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया और उन्होंने बयान फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, आप भी दोहराइएगा, ला तसुब्बू असहाबी, ला तसुब्बू असहाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लो अन्न अहदकुम अन्फक मिस्ल अहदिन ज़हबम मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। तुम मेरे सहाबा को गाली ना दो इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो तब भी वो इनके राहे लिल्लाह में खर्च किए हुए मुद बल्कि आधे मुद के अजर व सवाब को ना पा सकेगा। ऐसा क्यों है? वक्त वक्त की बात है। जब भी याद रखिए कि दीन का कोई काम अपनी बुनियादों पे होता है, शुरू होता है, अभी नया काम है, किसी को नाम का नहीं पता, किसी को काम का नहीं पता, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, ये भी नहीं पता कि लोग उससे फ़ायदा भी उठाएंगे कि नहीं। उस वक़्त जो खर्च करता है या उस वक़्त जान लगाता है, वक्त लगाता है, माल लगाता है, अपनी जगह ऑफर करते हैं, लोग अपनी स्किल्स को लेकर आते हैं, उनका अजर अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। आज तो हम कहते हैं ना कि गज़वे बदर हुई, तबूक हुई और इतनी फतूहात हुई और ये हुआ वो हुआ, सहाबा किराम जब ये काम करने में मददगार हुए थे उस वक़्त तो इनमें से कुछ भी नहीं था। हम तो तारीफ़ों को या तरक्कियों को या फतूहात को देख कर इस्लाम में आते हैं कि हाँ इस्लाम एक रोशन माजी रखता है और उसकी माजी में बहुत कुछ हुआ तो आगे भी होगा। सहाबा के पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी। ऐसे लोग सिर्फ इखलास की बुनियाद पर आते हैं। बस आप इसको यूँ समझिए कि जैसे कोई दीन का इदारा है बहुत मारूफ हो चुका है, जैसे एक ट्रेंड चलते हैं, इसी तरह दीन के नाम पे भी ट्रेंड है कि सब वहाँ जाते हैं, वो सीखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो दीन लेते हैं, वो नमाज़ें वहाँ पढ़ते हैं। कोई मस्जिद की बात कर लीजिए, बहुत बड़ी मस्जिद है, लोगों को पता है, लोग ढूंढ के आ जाते हैं। वजह क्या है कि उनके साथ बहुत सारे सालों की हिस्ट्री मौजूद है। इसके बरक्स कोई एक नया नाम जिसको लोग नहीं जानते, मारूफ नहीं है, कुछ है छोटी सी चीज़ है, तो उसके अंदर लोग वही आएंगे जो उनकी तालीमात और उनके पैगाम से मुतासिर होंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद बहुत लोगों में पज़ीराई होती है और चीज़ बढ़ती जाती है। या इसको अपनी आसान ज़ुबान में समझ लीजिए कि एक चलता स्टोर जिसको सब जानते हैं वो सारा दिन बिजी रहता है और एक नया दुकान बनाने वाला हो सकता है ग्राहकों का इंतज़ार करे। तो हमेशा याद रखिए, देखिए कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हक बात है, सही बात है, फ़ायदे की बात है, और आपको वहाँ जाके फ़ायदा हो रहा है तो दैट्स इट। सहाबा कराम की ये खूबी थी कि उन्होंने अल्लाह के नबी की बात पे एतबार किया और आपका साथ दिया। फिर इसके बाद देखिए कि हज़रत आयशा ने अपने भांजे को सहाबा के बारे में लोगों के तर्ज़ अमल की गलती पर मुतनब्बिह करने यानी वॉर्न करने और इस बारे में सही मौक़िफ़, मौक़िफ़ क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने का एहतमाम किया यानी उसके लिए अरेंजमेंट किया। ऐ हमारे रब, हमारे ज़माने की खालाओं को भी अपने भांजे भांजियों को ऐसी बातों से आगाह करने का फ़िक्र अता फरमा दे। हैं आप में से कोई किसी की खाला? हाँ, तो फिर अपने भांजों के लिए दुआ करें, भांजियों के लिए दुआ करें। देखिए हर रिश्ते की एक मिठास होती है ना, प्यार का रिश्ता, फुफ्फो का रिश्ता इतना प्यारा है कि कान पकड़ के भी वो बात मनवा सकती है, वो प्यार करके भी मनवा सकती है ना। गैर इसी उम्र का बच्चा हो तो उसको नहीं कर सकते। मैं खुद इसका एक्सपीरियंस करती हूँ कि बाहर बहुत सारी दीन की साथी हैं, उनके बच्चे भी हमसे इसी तरह प्यार करते हैं, तो मैं उनको सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ ये बच्चे मुझे कितने अजीज़ हैं, पर मैं इनको टच नहीं कर सकती, मैं इनसे बर्दा करती हूँ। तो अगर मेरा अपना हो तो मैं तो उसको प्यार भी करूँ ना, जब वो अच्छे काम करते हैं बस तारीफ़ कर सकती हूँ ना। तो अपने रिश्ते की एक मिठास होती है, अपने बच्चे की जो मिठास है वो तो किसी की भी नहीं हो सकती, उसको तो दोनों कानों से पकड़ के झंझोड़े और क्या उसकी ज़रूरत है कि उठ के जा सके। तो रिश्ते की मोहब्बत दीन के अमल के लिए इस्तेमाल करें। ये जो खामोशी होती है ये भी मोहब्बत है, लाड करना होता है ये भी मोहब्बत है, ये उनकी केयर करना ये भी मोहब्बत है। और वरना सारी दुनिया में इतने पड़े हैं ये भी फिरते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे बुरे काम करते हैं, अगर अपना बुरा करे तो ज़्यादा बुरा लगता है। हज़रत आयशा के नाते खाला भांजे का रिश्ता बार बार आ रहा है ना इन हदीसों में, तो आप अपने हर रिश्ते की फ़िक्र करें। बल्कि यहाँ चूंकि महरम रिश्ते हैं तो इसमें हर महरम रिश्ते की बात कर सकते हैं। एक बहन मेरे जहन में आ रही है कि उनके भाई नमाज़ नहीं पढ़ते थे या थोड़ा दीन से दूरी, तो वो उनको जिस जिस तरीके से माइल करती, कभी ख़त लिखती, कभी मैसेज में करती, कभी प्यार करती, अल्लाह के हुक्म से सारे भाई शुरू हो गए नमाजी। और वो कहते हैं भाजी हमने आपके लिए शुरू की है। वो कभी रो पड़ती थी, कभी जज्बात, कभी उनको तोहफे देने, कभी दावतों में बुलाना, मैं नहीं, मैंने ये सुना है नमाज ना पढ़ने का ये नुकसान है, तो आप तो मेरे प्यारे हैं, आप तो मेरे फलां हैं। तो वो अपनी जज्बात में इतने जज्बाती रो रो के उनको मैसेज करती थी कि जवाब में भाई उनके रो रो के मैसेज आते थे। तो हम अपनों से क्यों बेगाने हैं? मैं खुद सोचती हूँ कि हम बहुत बेगाने हैं। आज हम खाने खिलाते, खाते, तोहफे देते लेते, शादियों में तो बड़े शौक से जाते, कोई मर जाए तो हर एहतमाम से जाते, लेकिन हम किसी के दीन और अखलाक और किरदार के बारे में बात नहीं करते। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं खुद भी इसकी शिद्दत का एहसास नहीं होता। बहरहाल एक सिस्टर थी तो मुझे कहने की मेरे शोहर नमाज़ नहीं पढ़ते, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? मैंने कहा आप अपनी मोहब्बत वहाँ से जाहिर कीजिए, उनको बताइए कि भाई ठीक है मैं आपके साथ जन्नत में जाना चाहती हूँ, आप भी मेरे से वही काम करें। वो कहते नहीं मैं जन्नत में जाऊँगा, मैंने जाना ही जन्नत में। मैंने कहा ये यकीन तो अबू बकर और उमर को भी नहीं था आखिरी वक्त तक। तो याद रखिए मोहब्बत फातह आलम, ये मोहब्बत का अंदाज़ अगर हम सीख जाएं तो यकीन करें कम अज़ कम हम में से हर एक अपने अपने ख़ानदान और फैमिलीज़ की फ़िक्र तो कर ले, फिर नतायज अल्लाह के हाथ में। ये मैं नहीं कहती कि इस तरह करने से आपके सब के भांजे, भतीजियाँ, बच्चे, भाई बहन सारे नमाजी और सोम सलात के पाबंद होंगे, बट आप बरी हो जाएंगे अल्लाह ताला के हाँ कि अल्लाह ताला मेरी और कोई किसी से लड़ाई नहीं थी, मैं तो आज एक अच्छी बात करता तो हो सकता है 10 बातें मुझे उसके जवाब में अच्छी मिलती, पर मेरा आपके साथ वही है मामला जो हज़रत इब्राहिम का अपनी कौम से था। इन्ना बुरा मिनकुम, पढ़िए सूरह मुमताहना तो पूरी है ही है, खून के रिश्तों को अल्लाह के लिए छोड़ना या गैरों को अपना बनाना, ये सूरह मुमताहना। हज़रत इब्राहिम ने साफ कहा था कि मेरी सारी कौम मैं तुम्हारे इन कामों से बेनियाज हूँ। तो क्या वो कातिर रहम थे? वो कतर रहमी कर रहे थे? नहीं। तो बहरहाल हज़रत आयशा का उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हों को बुरा कहने वालों का एहतसाब, पीछे किन को बुरा कह रहे थे लोग? सहाबा कराम को इन जनरल। अब ख़ास तौर पर हज़रत उस्मान को किसी ने बुरा कहा होगा तो उस पर हज़रत आयशा ने क्या किया? हज़रत आयशा को ख़बर मिली कि कुछ लोगों ने हज़रत उस्मान के मुतल्लिक नामुनासिब गुफ्तगू की है। इस पर उन्होंने शदीद तनकीद की और हज़रत उस्मान की शान व अज़मत को बयान किया। इमाम अहमद ने उमर बिन इब्राहिम यशकरी से रिवायत नकल की है, कहते हैं कि मैंने अपनी वालदा को बयान करते हुए सुना कि इनकी माँ हज के लिए गई, तब बैतुल्ला के दो दरवाजे थे, ये तो आपको भी पता होगा ना, एक इस तरफ है तो एक बैक पे था। उन्होंने बताया जब मैं तवाफ़ कर चुकी तो आयशा के पास हाजिर हुई और अर्ज़ किया मोमिनों की माँ यकीनन आपके पास बेटों ने आपको सलाम अर्ज़ किया है। अब देखिए हज़रत आयशा की उम्र बहुत छोटी थी लेकिन उम्महातुल मोमिनीन में शामिल होने की वजह से सहाबा किराम इनको मोमिनों की माँ कहते थे। और ये पैगाम दिया है कि लोगों ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के मुतल्लिक बहुत नामुनासिब गुफ्तगू की है, नीज़ दरियाफ्त किया है कि आपकी इस बारे में क्या राय है। उन्होंने फरमाया जो इन पर लानत करे अल्लाह ताला इस पर लानत करे। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने यही बात 3 मरतबा दोहराई। यकीनन मैंने रसूलुल्लाह को अपनी रान उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ लगाए देखा, मैं आपकी पेशानी से पसीना पोंछ रही थी और आप पर वही नाजिल हो रही थी, बिला शक व शुबा आपने अपनी दोनों साहबजादियों की यके ब दीगरे इनके साथ शादी की। यकीनन आपने फरमाया कि उस्मान लिखो। एक रिवायत में है ए असीम तहरीर करो, यानी असीम क्यों कहा उस्मान को? आप देखिए उस्मान लफ्ज़ है ना, तो प्यार से नबी सल्लम उस्मान को असीम कहते थे। ये अरबों का एक असूल है कि असल नाम की इसको तस्गीर बोलते, छोटा करके बयान करना, जैसे मुन्नू चुन्नू कहते हैं, तो इन्होंने उस्मान कहने की बजाय असीम कहा। तहरीर करो, उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला अपने नबी के हाँ ये मुकाम किसी ऐसे शख्स को ही अता फरमाते हैं जो इसके हाँ बाइज्जत हो। बात वाज़े, यानी ये भी हज़रत उस्मान की एक शान बन गई। तो क्या पता चला कि हज़रत उस्मान की शान और अजमत और इनके बारे में नामुनासिब गुफ्तगू करने वालों की गलती के मुतल्लिक नबी करीम ने उम्मत को पहले ही से आगाह फरमा दिया। इमाम तिरमिज़ी ने अबुल अशद सनानी, सनान से थे ये, इनसे रिवायत नकल की कि शाम में खुतबा, खुतबा कौन होता है? ख़तीब की जमा, खड़े हुए, उन्होंने तकरीरें की, इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी थे। सबसे आखिर में एक शख्स खड़े हुए जिन्हें मुर्रा बिन काब कहा जाता था, उन्होंने बयान किया अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी ना होती तो तकरीर के लिए खड़ा ना होता। आपने फितनों का जिक्र फरमाया, यानी बतलाया कि वो जल्द नमूदार होने वाले हैं। इसी वक्त एक शख्स कपड़े में अपने मुंह को छुपाए हुए गुजरा। आपने फरमाया ये उस दिन हिदायत पर होगा। میں اس شخص کی طرف اٹھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کر کے پوچھا، یہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کی شان و عظمت پر استدلال یعنی دلیل لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ طرز عمل سے کیا، یعنی انہوں نے نبی نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا وہی حضرت عائشہ نے کرنا چاہا، اور حقیقی قدرت و منزلت تو انہی کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں مقام اور مرتبے والے ہوں۔ پھر اگلی بات پتہ چلتی کہ عثمان پر لعنت کرنے والوں پر حضرت عائشہ نے لعنت کی۔ بلا شک و شبہ حضرات صحابہ کو برا کہ بھلا حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنے والے لعنت ہی کے مستحق ہے۔ خود رحمت دو عالم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی۔ امام طبرانی نے عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد نصیب ہونے سے بچائے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ صحابہ کی برائی نہیں کرنی۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف تو ہم اس بک میں یہ سیکھ رہے ہیں نا کہ برائی دیکھ کر چپ نہیں رہنا یا اچھا کام کرنے کی رغبت دلانی ہے، دوسری طرف ہم سائڈ پہ کتنی مختلف چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں نا، جیسے صحابہ کو گالی نہیں دینی۔ تو آج آپ دیکھیے کہ یہ فرق اتنا مٹ گیا ہے کہ آج سے 25-30-40 سال پہلے یہ دو بہت مستقل گروہ تھے، شیعہ اور سنی کے نام پہ۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دوسرے کے شادی ہو بیاہ ہو۔ اب باہر کے ملکوں میں یہ بالکل عام ہے، جو سنی ہے وہ بھی صحیح سنی نہیں ہے اور جو شیعہ ہے وہ بھی صحیح شیعہ نہیں ہے، لیکن شیعہ مسلک تو کلیئرلی صحابہ اکرام کے اگینسٹ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ ناموں میں نہ جائیں لیکن اللہ کے نبی کی طرح آپ کے صحابہ کی عزت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے سے نہ روکنے پر ام سلمہ کا احتساب۔ کچھ لوگوں کے روبرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی گئی اور انہوں نے اس سے منع نہ کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کرنے والوں پر شدید تنقید کی۔ امام احمد نے ابی عبداللہ جدلی سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا، میں ام سلمہ کے ہاں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا معاذ اللہ یا سبحان اللہ، یہ معاذ اللہ بھی اصل میں سبحان اللہ ہی ہے، معاذ اللہ کہ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یا پھر اسی طرح کا کوئی اور جملہ کہا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی یقیناً اس نے مجھے گالی دی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو عبداللہ جدلی نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی، رسول اللہ کو کیسے گالی دی جا سکتی ہے؟ انا یسبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ علی اور ان سے محبت کرنے والے کو گالی نہیں دی گئی، اور بلا شک و شبہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے۔ دیکھیں انڈائریکٹ بات ہوگی نا، یعنی حضرت علی سے جو محبت کرتا ہے اس کو گالی دی، تو اللہ کے نبی تو آپ سے محبت کرتے تھے نا، تو گویا کہ وہ گالی پھر اللہ کے نبی کو گئی۔ کیا پتہ چلا، ایک تو حضرت علی کا مقام مرتبہ، آپ کی قدر و منزلت کتنی بلند تھی یہ پتہ چلتی ہے، دوسری بات ام سلمہ کی رائے میں کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ اس کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی جائے اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ایسا کرنے سے منع کرے۔ تیسری بات، ام المومنین ام سلمہ نے حضرت علی کو گالی دیے جانے پر خاموشی اختیار کرنے کی غلطی کی سنگینی کے پیش نظر احتساب میں سختی اور درشتی بھی سختی کو ہی کہتے ہیں، درشتی کا اسلوب اختیار کیا۔ یعنی اتنی بڑی بات سن کے اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے یا آپ سختی کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے شوہر کو کوئی گالی دے تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ پیار سے بات کریں گے، غصہ تو آئے گا نا۔ تو اسی طرح اگر ہمیں اللہ کے نبی اور صحابہ سے محبت ہے تو ہم پھر ان کے بارے میں غلط بات سن کر بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ام سلمہ نے احتساب کی تائید میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی، جو کہ صحابیات اور امہات المومنین کا عام طرہ تھا کہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو بات کرتے تھے۔ پھر اگلی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی رسول اللہ کہنے پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا احتساب۔ حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے۔ وصی کیا ہے؟ اصل میں الموصی والموصى، مراد ہے وصیت کیا جانے والا۔ شیعہ حضرات کا ایک عقیدہ ہے، وہ کیا کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو پھر تم خلافت لوگے، اور ابو بکر نے ان سے چھین لی۔ اصل میں ان کی اصل جنگ بھی یہی ہے، वो साहबा को क्यों बुरा कहते हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान, तीन को ख़ास तौर पे, कि इन तीनों ने खिलाफत छीन ली हज़रत अली से। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात सुनकर, ये कि हज़रत अली को ये कहा गया और दूसरा, इसके बारे में उन्होंने इस चीज़ का रद्द किया। दलील क्या है? इमाम मुस्लिम ने असवद बिन यजीद से रिवायत नकल की और वो बयान करते हैं कि बास लोगों ने आयशा के सामने जिक्र किया कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु वसी थे। इस पर उन्होंने फरमाया कि आपने कब इन्हें वसीयत की, यानी वसी बनाया? यकीनन मैंने रसूलुल्लाह को अपने सीने के साथ, जो उन्होंने कहा गोद के साथ लगा रखा था, तो आपने थाली तलब फरमाई, आप मेरी गोद में गिरे और मुझे पता भी ना चल सका कि आप इंतकाल फरमा गए। और आपने कब इन्हें वसीयत की? क्योंकि आप जानते ना कि नबी सल्लम की जान हज़रत आयशा की गोद में निकली थी। हज़रत आयशा इस पर फ़ख्र करती थी कि इधर अल्लाह के नबी का सर था जबकि हज़रत आयशा के मतलब गोद में थे। मतलब ये था कि उस वक़्त तो मैं पास थी, तो मैंने तो नहीं सुना कि आपने कोई बात हज़रत अली से की या हज़रत अली के बारे में की। तो क्या पता चला कि हज़रत अली का वसी रसूलुल्लाह होना ये अकीदा बेअसल और बिला दलील है। दूसरी बात, दीन के मुतल्लिक कोई बात कहने वाले से उसकी दलील तलब की जाएगी। हज़रत आयशा ने हज़रत अली के वसी होने के अकीदे की दलील तलब की और हज़रत आयशा के एहतसाब में किस कदर ज़ोर और कुव्वत थी, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि वह अल्लाह के नबी के हाल अहवाल से बहुत आगाह थी। तो क्या पता चला कि किसी एक सहाबी के बारे में भी कोई गैर मारूफ बात नहीं करनी चाहिए। फिर अगला वाक़या है अहले इराक़ की हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो से बेवफाई पर उम्मे सलमा की तनकीद। अहले कूफा ने हज़रत अली बिन हुसैन को मकातीब अरसाल किए, जिनमें इनके लिए अपनी मोहब्बत, इखलास और वफादारी का इजहार करते हुए इन्हें कूफा आने की दावत दी। मकातिब के किताबत से मकतब, यानी ख़त लिखे। हज़रत हुसैन इन बातों का यकीन करते हुए इनकी तरफ रवाना हुए, लेकिन इनकी वहाँ तशरीफ़ आवरी से पेशतर यजीद की तरफ से वाली इराक़ की हैसियत से उबैदुल्ला बिन ज़ियाद पहुँच चुका था। अहले कूफा हज़रत हुसैन की बजाय उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के साथी बन गए। उबैदुल्ला और हज़रत हुसैन के दरमियान मार का एक कारज़ार बरपा हुआ, जिसमें हज़रत हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। हज़रत उम्मे सलमा को इस सूरत हाल की खबर मिली तो उन्होंने अहले कूफा की बेवफाई की बिना पर इन पर लानत की। इमाम तबरी ने शाहर बिन होशब से रिवायत नकल की है, उन्होंने बयान किया, जब हुसैन बिन अली की शहादत की खबर आई तो मैंने उम्मे सलमा को अहले इराक़ पर लानत करते हुए सुना। उन्होंने फरमाया कि उन्होंने इनको कत्ल कर दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें कत्ल करे। उन्होंने इन्हें धोखा दिया और फिसलाया, अल्लाह ताला इन पर लानत करे। तो क्या पता चला कि अहले कूफा किस कदर बेवफा और गद्दार थे? मुसलमानों के साथ गद्दारी करके इनको कत्ल करवाने के लिए बददुआ करना और इस पर लानत करना सही और दुरुस्त है, और उम्मे सलमा ने अहले कूफा के इसी किस्म के तर्ज अमल की बिना पर इनके लिए बददुआ की और इन पर लानत की। यानी बात इसमें भी वाज़ह है, सेम टॉपिक चल रहा है, इसलिए इसमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगला वाक्य देखिए, मारका यरमूक में भागने वालों को मुसलमान औरतों का डांटना। मारका यरमूक में रूमियों के हमले की शिद्दत के वक्त बाज़ मुसलमानों ने पिसपाई इख्तियार की। पिसपाई क्या कहते हैं? पीछे होना। इस पर मुसलमान खवातीन ने इनको डांटा और मारका कारजार में वापस पलटने की तलकीन की। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमहुल्ला ने इस बारे में तहरीर किया, यानी ये वाक्य वहाँ मौजूद है, और वो यानी मुसलमान खवातीन पिसपाई इख्तियार करने वाले मुसलमानों को मारती और कहती, हमें आजमी काफरों के हाथों में छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो? इनके डांटने के बाद किसी के लिए मैदान कारजार की तरफ पलटे बगैर चारे कार न रहता। अलावा अबू मोहम्मद कूफी ने इस वाक़े को कदर तफसील से लिखा है और इस बारे में उन्होंने ये भी तहरीर किया। सादा बिनत आसिम खौलानी ने बयान किया कि इस रोज़ मैं औरतों के साथ टीले पर थी, जब लश्कर इस्लामी का दाया हिस्सा पसपा हुआ तो लुबना बिनत जरीर हमरिया ने हमें चीख कर कहा, ए अरब औरतों, आदमियों के सामने उठ खड़ी हो जाओ और अपने बच्चों को अपने हाथों में उठा लो। औरतों ने भागने वाले मुसलमानों को ले जाने वाले जानवरों को पत्थर मारे। आस बिन मम्बा की बेटी ने बावाज़े बुलंद कहना शुरू किया, अल्लाह ताला इस आदमी को जलीलो ख्वार कर दे जो अपनी बीवी को छोड़कर राहे फरार इख्तियार करे। दूसरी औरतों ने भी अपने शोहरों से कहना शुरू किया, अगर तुम अजमी काफरों से हमारी हिफाजत ना करो तो तुम हमारे खाविंद ही नहीं। हिंद बिन उत्बा ने इस्लामी लश्कर के दाएं हिस्से के घुड़सवारों को देखा कि वो पसपा हो रहे हैं, यानी आप समझ रहे हैं कि मर्द हिम्मत हार के जा रहे हैं तो औरतें उनको जोश दिला रही हैं। क्या कहा? तो इन्हें चीख कर कहा, अल्लाह ताला और इसकी जन्नत से भाग कर कहाँ जा रहे हो, और वो तुम्हारे हालात से आगाह है। और उन्होंने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो भी पसपा हो रहे हैं, तो उन्होंने इनके घोड़े को अपनी छड़ी मारी और कहा, ए इब्ने सखर, कहाँ जा रहे हो, लड़ाई की तरफ पलटो, अपने खून को निसार करो ताकि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के खिलाफ की भी तुम्हारी शरारतों से तुझे पाक कर दे। तो क्या पता चला कि मुसलमान औरतें कितने सब्र और इस्तकलाल और जज्बा ईमान वाली थीं, और रूमियों की शिद्दत यलगार के वक्त ना चीखो पुकार और ना ही रोना पीटना, ना घबराहट और परेशानी, और ना ही राह फरार इख्तियार करने की ख्वाहिश, बल्कि भागने वाले मुसलमान मर्दों की सवारियों को पत्थर मारकर मैदान कारजार की तरफ वापस पलटाने की सही और कोशिश। आज की औरतों में इतनी जुर्रत है, पहले बेहोश हो जाए, गोली नहीं चला सकती। आप देखिए कि अरबों में औरतें भी बहादुर थी, घुड़सवारी करती, तीर अंदाजी करती, वो मैदान जंग में भी कूदती थी कभी ज़रूरत पड़ी तो, जैसे कि यहाँ पड़ी तो उन्होंने मर्दों को जोश दिलाया। हमारी औरतें क्या उठा सकती हैं, सिर्फ चमचा प्लेट। हाँ, नाजुक है हम लोग। आपको पता है कि असमा हिजरत करके मक्का से मदीना जा रही थी, और अभी मदीना पहुँचे भी नहीं तो बच्चा पैदा हो गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर, बच्चा जो है मदीना में आने के बाद सबसे पहला बच्चा, जो यही जो बार बार हदीस से नकल हो रही है ना हज़रत आयशा से, उनके नाते से ये खबर फैल गई थी, क्योंकि यहूद ने एक शोशा छोड़ दिया था कि मुसलमानों पे जादू हो चुका है, इनकी नस्लें आगे नहीं चलनी। लेकिन ये पहला बच्चा जब पैदा हुआ तो इसकी इतनी खुशी मनाई गई कि ऐसा नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि उनको क्या बनी हुई थी साल में मक्का से मदीना जाने की, और पैदल घोड़ों में सवार में, क्योंकि जो काम करना होता था वो लोग कर लेते थे, हम तो प्लान बनाते हैं 5 साल के और करते उसको 10 साल में भी नहीं है, तो बस वो सुनते थे और मान जाते थे। फिर इसमें आप देखिए कि औरतें अगर ऐसे वक्त में बहुत पैनिक क्रिएट कर दें तो फिर तो हालात पहले से भी बिगड़ने लगते हैं। तो हमारे लिए सीखने की बात है कि हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर इसी तरह से मोहम्मद हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, जिस उम्मत की औरतें ऐसे जज्बा ईमानी वाली हों वो मौलाए कादिर व मुक्तदर के फजल व करम से दुनिया में जलील व रुस्वा नहीं हो सकती। ऐ हमारे रब्बे कदीर, हमारी औरतों को इन पाकबाज़ औरतों के नक्शे कदम पर चला, इन्नक समय मुजीब। क्योंकि औरत का ब्रॉटअप जितना लग्जरी लाइफ में होगा, उसको बहुत रिलैक्स करके और जैसे मतलब उसको बड़ा मकसद नहीं दिया जाएगा ना, तो औरत नाजुक अंदाम होगी। अब देखिए सीधी सादी बहुत ही हल्की सी औरत होती है कोई, लेकिन अल्लाह ना करे को मजबूरी हुई, शौहर फौत हो गए, हैंडीकैप हो गए, तो वो आयरन वूमेन बन जाती हैं। तो हर बंदे के अंदर स्टेमिना बहुत होता है, हम उसको यूटिलाइज कितना करते हैं। हमेशा अपने लिए दी बेस्ट को यूज़ करें, मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने परेशान नहीं होना, मैंने ये नहीं करना, और मुझे कुछ भी नहीं है। यानी आप हर हाल में अपने आप को लेकर देखें। बाद दफ़ा हवा बदलती है तो लोग है ज़ुकाम लग गया, है ज़ुकाम लग गया, भाई ज़ुकाम लग गया तो क्या हुआ, आप उसको लग जाए, क्या मुश्किल बात है। हम सवार कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो उससे फिर और नुकसान फिर हमारा अपना ही होता है। वाकई हमें वो ज़ुकाम बहुत बड़ी एक वबा लग रही होती है, मुसीबत लग रही होती है, और कोई दूसरा तो इंजॉय करेगा कि छींकें आ रही हैं, अच्छी बात है, जिसम हल्का हो रहा है, कोई नुकसान नहीं, जरहम कुल्ला कह रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं, तो जिस चीज़ को जिस एंगल से लेंगे आपको वो वैसी ही लगेगी। फिर उसके बाद अगला वाक्या क्या है, नर्द वाले के कुंबे को हज़रत आयशा रज़ील्ला तन्हा के अपने घर से निकालने की धमकी। एक कुंबे के लोग हज़रत आयशा के यहाँ मुकीम थे, इन्हें इत्तला मिली कि इनके पास नर्द है। हज़रत आयशा ने इनको वार्निंग दी कि अगर उन्होंने नर्द को घर से बाहर ना निकाल दिया तो वो इन्हें घर से निकाल देंगी। इमाम मालिक ने उम्मे अलकामा से रिवायत नकल की, और उन्होंने रसूलुल्लाह की जौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत नकल की। यकीनन इन्हें खबर मिली कि एक घराने वाले जो इनके घर में ठहरे हुए थे, इनके पास नर्द है। उन्होंने इन्हें पैगाम भेजा, अगर तुमने इसको बाहर ना निकाला तो मैं तुम्हें अपने घर से ज़रूर निकाल दूंगी। इस बिना पर लोगों ने तनकीद की। क्या पता चला कि हज़रत आयशा ने तहदीद और धमकी इस्तेमाल की, और यह एहतसाब के दर्जात में से एक दर्जा है। दूसरी बात है, हज़रत आयशा की अपने घर को नाफरमानी के सामान से पाक रखने की ख्वाहिश और रग़बत किस कदर ज़्यादा थी, इसके बरक्स आज के बहुत से मुसलमान घरानों ने क्या शक्लो सूरत इख्तियार कर रखी है। ड्राइंग रूम, लॉबियों और बेडरूमों को अल्लाह ताला की नाफरमानी के साजो सामान से भरने और अपने ज़ोम के मुताबिक खुद सजाने पर किस कदर माल व दौलत और सही व कोशिश मर्द व ख़वातीन सर्फ करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह हमें और हमारे बहन भाइयों और हमारी आइंदा नस्लों और सारे मुसलमानों के घरों को अपनी नाफरमानी के साजो सामान से हमेशा के लिए पाक साफ रखना, और ऐसा माल और दौलत कभी ना देना जिससे ये चीज़ें खरीदी जा सकें। अब आप सोच रहे होंगे नर्द क्या होता है, समझ आए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, साज आवाज़, जैसे वो पियानो या कोई ऐसी चीज़ अपने दौर के वक्त की चीज़ थी कि जिससे फिर लोग इस तरह की चीज़ों में आते थे। अब इस मेयार पे ज़रा आज हम उम्मत मुस्लिमा के घरों को परखें तो बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी ना। तो बहरहाल अपने घरों को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए, रहमत के फरिश्ते भी वहीं आते हैं। और दूसरा ये कि देखिए कि वो कह रहे हैं कि मैं घर से चली जाऊंगी या मैं अंदर दाखिल नहीं होंगी, आज कोई ऐसा करे तो उसको लोग कितना रिजिड और कितना सख्त मिजाज कहें। फिर ख़वातीन खम्स के हमामों में जाने पर आयशा का एहतसाब, खम्स जगह का नाम है और हमाम कहते हैं जैसे आज स्विमिंग पूल्स कह लीजिए कि जहाँ इज्तमाही तौर पर एक जगह बनी होती थी और ख़वातीन वहाँ गुसल करती थी। खम्स की कुछ औरतें हज़रत आयशा के पास आईं और वो औरतें हमामों में जाया करती थी। हज़रत आयशा ने इस बिना पर इनका एहतसाब किया। इमाम अहमद ने अता बिन अबी रब्बाह से रिवायत नकल की है, उन्होंने बयान किया खम्स की औरतें आयशा के पास आईं तो आयशा ने इनसे कहा, शायद कि तुम इन औरतों में से हो जो हमामों में दाखिल होती हैं। उन्होंने जवाब दिया, हम ऐसे ही करती हैं। हज़रत आयशा ने इनसे कहा, खबरदार, यकीनन मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जिस औरत ने अपने खावन के घर के अलावा किसी और जगह कपड़े उतारे, इसने अपने और अल्लाह ताला के दरमियान पर्दे को उठाड़ दिया। अब देखिए, औरतें औरतों में भी गुसल कर रही हैं, उस पर भी इतनी बड़ी बात आपने कह दी। क्या पता चला कि हज़रत आयशा ने खम्स की ख़वातीन के मतलब सुनी हुई बात पर एहतसाब पहले इन्हीं से इस बात की तस्दीक की। बहुत से एहतसाब करने वाले इस बारे में कोताही का शिकार है, यानी सुनी सुनाई बातों पे बात नहीं करनी चाहिए बिला तहकीक। आप यहाँ किसी ने ये किया नहीं, पहले पूछे आपने ये किया, क्या आपने ये कहा है, क्या आपने ये देखा, फिर उसके बाद बात करें। दूसरी बात, मेहमानी के शैतानी और झूठे आदाब हज़रत आयशा के लिए मेहमान औरतों की गलती पर एहतसाब की राह में रुकावट ना बने। हम होते तो क्या कहते, अब घर है मेहमान को क्या कहें, या कोई हमारे घर आया होता तो या हम किसी के घर गए होते, दोनों सूरतों में मजबूर हो जाते। हम कहते नहीं, हम नहीं कुछ कहेंगे, खाम खा ये तो बड़ी बेअदबी की बात है। लेकिन साहबियात ऐसी नहीं थी। फिर उम्मुल मोमिनीन ने अपने इख्तसाब में नबी सल्लम की हदीस कोट की। यही मामला हज़रत उम्मे सलमा ने भी किया। अगली हदीस में देखिएगा, ख़वातीन खम्स के हमामों में जाने पर उम्मे सलमा का एहतसाब। हमामों में जाने वाली खम्स की कुछ औरतें उम्मे सलमा के पास आईं, उन्होंने भी वहाँ एहतसाब किया। क्या सवाल जवाब हुए? नबी करीम की ज़ौजा उम्मे सलमा के पास कुछ औरतें आईं तो उन्होंने इनसे दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, अहले खम्स में से हैं। उन्होंने फरमाया, तुम हमामों में जाने वाली औरतों में से हो? उन्होंने पूछा, क्या वहाँ जाने में कुछ हर्ज है? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जिस औरत ने अपने घर के अलावा किसी और जगह अपने कपड़े उतारे, अल्लाह ताला इससे अपने पर्दे को चीर देते हैं। पिछले किस्से की तरह इसमें भी ये बात पता चल रही है कि सुनी सुनाई बात पे एहतसाब नहीं करना, मेहमानों की गलती पर उनका एहतसाब करना है और एहतसाब की तायद में अल्लाह के नबी की बात बयान करनी है। दोनों किस्सों में काबिले जिक्र बात है कि उम्मे सलमा और आयशा ने दोनों ने ही खम्स की औरतों के हमामों में जाने का नोटिस लिया और वहाँ जाने से मना किया। अब भी अगर अहले दीन में से हर एक मर्द व जन अपनी बसात के मुताबिक एहतसाब करना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से शर में कमी और खैर में इजाफा होने की उम्मीद है। अब आज ये हमाम क्या है, यानी स्विमिंग पूल्स हैं, यहाँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है लेकिन बाहर के मुल्कों में तो आम है, हर जगह पे है। तो वहाँ पर कई लोग सवाल करते हैं कि अच्छा औरतें ही तो होती हैं तो हम क्या करें? तो याद रखिए कि जो औरत का औरत से सत्तर है उसका ख्याल रखा जाएगा। ड्रेस कोड जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपड़े बिल्कुल जिस्म के साथ जुड़े में। स्विमिंग में एज इट इज़ की बुराई नहीं है, शर्त यह है कि औरत का सतर नहीं खुलना चाहिए। और बाज़ लोग जो हैं वो करते हैं तो वो ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन कर, या वो कपड़े कि जो जिस्म की शेप को वाजे नहीं करते तो वो पहन के करती हैं। बाज़ तो पूरे अबायों में भी चली जाती है, उनको तो स्विमिंग करनी है ना, तो वो जो लोग बिकिनीज और ऐसे ड्रेस पहनते हैं उनके ख्याल में उससे स्विमिंग ईजी हो जाती है। तो बहरहाल पर्दे के हिजाब के साथ, यानी मुराद कहने का ये कि सत्तर की पाबंदियों के साथ अगर कोई स्विमिंग करना चाहे तो कर सकता है। जी वैक्सिंग करती हैं ख़वातीन, जब ख़वातीन से कराती हैं उसमें भी सत्तर की हद लाजमी है, यानी घुटनों से नीचे और नाव से ऊपर बीच का हिस्सा सत्तर का होता है। तो अगर कोई वैक्स कराता है बाजू करवा ले, हाफ लेग्स करवा सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं करा सकते। औरत का औरत से भी पर्दा है। अब बाद लोग कहते हैं अच्छा जी जब बच्चा पैदा होता है तब भी तो हम दिखाते हैं, तो वो मजबूरी है, वो उसके बगैर नहीं, वो तो एक डॉक्टर के पास। वैसे तो देखिए जब डॉक्टर पे औरत जाती है तो पूरा जिस्म बाद दफ़ा काटना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तो मजबूरी और शौक और इसमें फ़र्क है। आप खुद कर सकते हैं, आपको ऐसी चीज़ों में नहीं, लेकिन और बाज़ लोग तो पूरे फुल बॉडी की करवाते हैं और उसमें देखिए ना, क्यों कहते हैं औरत ही तो है। और उसमें भी यही मुझे किसी ने दलील दी कि देखिए ना जब बच्चा पैदा होता है तो फिर भी तो कोई दाई या कोई औरत दूसरी औरत देखती है ना, तो डॉक्टर भी तो हमें देखती हैं, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? तो फ़र्क फिर आपको दोनों का समझ है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, वो एक वक्त की नौइयत है। और उसमें भी जो अच्छी डॉक्टर्स होती हैं वो उस वक़्त भी खुले आम नहीं रखते। यहाँ तो मुझे नहीं अंदाज़ा, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। लेकिन मैंने जो बाहर का भी सुना है तो वो जिस्म के ऊपर कपड़ा डाले रखते हैं पूरे वक्त में, औरत को बिल्कुल फुल नेकेड नहीं रखते। बाकी अल्लाह ताला हर एक के हालात बेहतर करे, और वही बात है कि जितनी शर्मो या होगी उतना ज़्यादा इंसान अपने आप को इन चीज़ों से बचाएगा। ठीक है।